ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यन्बद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात्प्राणिनां वदः तथा नायस्य कैवल्याभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दं कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पते यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वदात्प्राणिनां वदः तथा नायस्य कैवल्याभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दं कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वदात्प्राणिनां वदः तथा नायस्य कैवल्याभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दं कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते यत् जिसमें निबद्धः बंधा हुआ अभिमानः मिथ्या धारणा अयम यह तद् उस शरीर के वधात् विनाश से प्राणिनाम जीवों का वधः विनाश तथा उसी प्रकार से नहीं यस्य जिसका कैवल्यात् अद्वितीय या परम होने के कारण अभिमानः भ्रांत धारणा अखिल आत्मनः समस्त जीवों के परमात्मा का परस्य भगवान का दमा कर्तुः परम नियंता ही निश्चय ही हिंसा क्षति केना कैसे अस्य उसका कल्प्यते संपन्न की जाती है। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। चूंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता अतः उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतः यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे हर्ष या पीड़ा का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। वे ना तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं ना निंदा से। तात्पर्य भौतिक शरीरों से आवृत होने के कारण बड़े से बड़े विद्वान तथा मिथ्या ढंग से शिक्षित प्राचार्य समेत सारे बद्ध जीव यह सोचते हैं कि जो ही शरीर का अंत हो जाता है वैसे ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह उनकी देहात्म बुद्धि के कारण है। कृष्ण के ना तो ऐसी देहात्म बुद्धि होती है ना ही उनका शरीर उनकी आत्मा से भिन्न है। अतः जब कृष्ण में किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि है ही नहीं, तो फिर वे भौतिक स्तुतियों तथा दोषारोपणों से किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं? यहाँ पर कृष्ण के शरीर को कैवल्य कहा गया है, जो उनसे अभिन्न है, क्योंकि हरेक को देहात्म बुद्धि होती है। अतः यदि कृष्ण भी ऐसे ही हों, तो फिर उनमें तथा बद्जीव में क्या अंतर हुआ? भगवत गीता में कृष्ण के उपदेशों को निर्णायक माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। ज्यों ही भौतिक शरीर मिला नहीं कि मनुष्य में चार अवगुण आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भौतिक देह न होने के कारण होने से उनमें ये अवगुण नहीं पाए जाते। वे सदैव आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्मय तथा आनंदमय रहते हैं। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहः। उनका स्वरूप शाश्वत आनंद पूर्ण तथा ज्ञान पूर्ण है। सच्चिदानंद विग्रह आनंद चिन्मय रस तथा कैवल्य एक ही है। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर परमात्मा रूप में विस्तार कर सकते हैं। भगवद गीता में 13:3 इसकी पुष्टि हुई है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारता। भगवान परमात्मा है, अर्थात सभी जीवों की आत्मा है। अतः यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि उनमें दोषपूर्ण देहात्म बुद्धि नहीं पाई जाती। वे हर एक शरीर में स्थित होते हुए भी देहात्म बुद्धि नहीं रखते। वे ऐसी धारणाओं से सदैव मुक्त रहते हैं। अतः वे जीव के भौतिक शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकते। भगवद गीता में 16:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तान अहम दुषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान् आसुरेषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा खल हैं, जो मनुष्यों में निम्नतम हैं, वे मेरे द्वारा इस भवसागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। किंतु जब भी भगवान मनुष्यों को असुरों जैसा दंड देते हैं, तो यह दंड इन बद जीवों के हित में होता है। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद जीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं। किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद जीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निम्नतर योनि में डालकर दंडित करते हैं, और जब फिर वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं, तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता। किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं, और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। इसका सजीव उदाहरण वृतासुर का है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक महान भक्त था। चूंकि उसने भक्तों के शिरोमणि शिव जी का उपहास किया, अतः उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं, तो वे उसकी निंदा करने की आदत छुड़ा देते हैं, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। आप समस्त भक्तों के चरण कमल में नतमस्तक होकर और श्रील प्रभुपाद और आप सबकी प्रसन्नता के लिए कुछ निवेदन करता हूँ, और अगर कुछ आपको बुरा लगे तो पहले से इसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। ये नारद मुनि जो है ये श्लोक बोल रहे हैं, और ये श्लोक इतनी इन्फॉर्मेशन है इस श्लोक के अंदर कि कई दिनों हफ्तों तक इस पे चर्चा की जा सकती है। तो हम जो थोड़ा सा इस पे जितना चर्चा कर पाए उसका प्रयास करेंगे। इस अध्याय का जो आधार है कि ये अध्याय साथ में स्कंद का पहला अध्याय बोला ही क्यों गया था। सो ये बोला गया था क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने पिछले स्कंद में, छठे स्कंद में एक एक बात बोली थी। छठे अध्याय, छठे स्कंद के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में उन्होंने ये बोला था कि इंद्र की सहायता करने के लिए विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और दिति को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दिति जो है वो उनकी माँ थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की। तो यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी ने यह बात बोली तो परीक्षित महाराज के मन में एक डाउट आ गया कि आखिर भगवान ने, कृष्ण ने, विष्णु ने एक व्यक्ति की मदद करने के लिए दूसरी व्यक्ति का वध क्यों किया। ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। ओ केशव मुरारी प्रभु बैठे हैं, केशव मुरारी के प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सो यहाँ पर उनके मन में ये एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हमने तो हमेशा यही सुना था कि भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान निरपेक्ष हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे है कि एक व्यक्ति की मदद करने के लिए दूसरे व्यक्ति को मार दिया भगवान। तो इससे तो स्पष्ट रूप से पक्षपात दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से पक्षपात दिखाई दे रहा है। और इसीलिए लोग भगवान पर लांछन लगाएंगे कि भगवान जो है वो शास्त्रों में लिखा जरूर है कि वो निरपेक्ष हैं, वो पक्षपाती नहीं है, लेकिन वास्तव में वो पक्षपाती हैं। एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए वो दूसरे का अहित भी कर सकते हैं। किसी को मारना उसका अहित ही कहा जाएगा। तो उन्होंने इस शंका का निवारण करने के लिए सातवें अध्याय, सातवें स्कंद के शुरू शुरू में ही ये प्रश्न पूछ लिया उनसे कि आप प्रमाण सहित इसका निवारण कीजिए, शंका का आप प्रमाण दीजिए और निवारण कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी को गुस्सा नहीं आया कि मुझसे प्रमाण मांग लिया, को बहुत अच्छा लगा उनको कि ये कुछ भावुकता में जो है भावुकता में बहकर कोई बात नहीं कर रहे, लॉजिकली तर्क सहित एक बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया तो हमें इतना सुंदर अध्याय हमें सुनने को मिला। सो सुखदेव गोस्वामी ने इस शंका का निवारण करने के लिए उस घटना का वर्णन किया जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, महाराज युधिष्ठिर कर रहे थे राजसूय यज्ञ, और वहां पर ये प्रश्न खड़ा हुआ। वहां पर शिशुपाल ने जो है कृष्ण की बहुत आलोचना की, बहुत भला बुरा बोला और कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। और जब शिशुपाल मरा तो मर के वो भगवान कृष्ण के कृष्ण में समा गया। सो ये देखकर, और सभी लोगों ने देखा, केवल युधिष्ठिर महाराज ने नहीं देखा, वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस अद्भुत आश्चर्यजनक घटना को देखा। तो उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि एक व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करे जा रहा है, जो पैदा होते ही आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर दिया, जो जब बोल भी नहीं पाता था तब से आपको गालियां दे जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति का आपने वध किया और नरक जाने की जगह वो आप में समा गया, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली उसने। वो बात अलग है कि वो सायुज्य मुक्ति जो है वो टेम्पररी थी, बाद में जो शिशुपाल है और दंत वक्र भी, वो सायुज्य मुक्ति तो उनको जब वो समाये तो सायुज्य मुक्ति हुई, लेकिन कुछ देर के बाद उनको सारूप्य और सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई उनको, क्योंकि ये जय और विजय है शिशुपाल और दंतवक्र। तो जब इनका वध किया भगवान ने तो पहले सायुज्य मुक्ति मिली, फिर सारूप्य सालोक्य मिली, मतलब चतुर्भुज रूप इनको मिल गया और ये वापस वैकुंठ में अपनी उस सेवा में स्थापित हो गए जो चार कुमारों द्वारा श्रापित होने से पहले जो उनकी स्थिति थी उनकी। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा नारद जी से कि वेण जो था, एक राजा वेण था महाराज अंग का पुत्र, और उसी के वेण के शरीर को ही मथकर जो है महाराज पृथु प्रकट हुए, अर्ची हुई, और उससे पहले निषाद उनके शरीर से निकला था बाहर, एकदम काला कलूटा, उसके तांबे के रंग के बाल थे और बहुत ही पापी था वो, और उसको सब महात्माओं ने बोला कि तुम जंगलों में और पहाड़ों में जाकर रहो क्योंकि बहुत ही पापी था, सिंफुल था। और दोबारा जब उन्होंने उसको मथा वेण के शरीर को तो उससे महाराज पृथु आए, प्रकट हुए, जो कि भगवान के शक्ताभिशक्ता आ रहे। सो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वेण ने भी आपकी आलोचना की, उसको तो आपने नरक भेज दिया, और यहाँ पर शिशुपाल भी आपकी आलोचना कर रहा है और उसको आपने सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी, आपके शरीर में प्रविष्ट हो गया। ऐसा ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है मुझे, आप मेरी शंका का निवारण करें। तो उसके उत्तर में जो नारद मुनि ये श्लोक सब बोल रहे हैं, तो आगे पूरा अध्याय में और कई चीज़ों का वर्णन करेंगे, फिर कुछ एक बात बोलेंगे नारद मुनि तो महाराज युधिष्ठिर और प्रश्न पूछेंगे तो प्रहलाद महाराज का प्रसंग आ जाएगा। तो सो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ। सो इसका जो नारद मुनि जो पहली बात बोल रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, जो देहात्म बुद्धि में है, वो यह सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, जब शरीर नष्ट हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, जीव का कर्तव्य है कि पूरी तरह भोग करे, जीव है उसको बहुत अच्छे से भोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी पश्चिमी सभ्यता विशेष रूप से और पूरा भौतिक संसार इसी नियम के ऊपर चल रहा है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर भी घी पियो, है ना, घी जो है विलासिता का चिन्ह है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो ऐश करो, है ना, कोई टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए अपने सुख के बारे में सोचो। क्यों भस्मी भूतस्य देहस्य, जब ये शरीर नष्ट हो गया, इस शरीर को जला दिया, पुनरागमनो किम भवेत, दोबारा कौन आएगा, खत्म हो गया बात, है ना। और इसीलिए जीव को ये सोचना चाहिए, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूं, ये सारी चीजें मेरे भोग के लिए, ये सारी चीजें किस लिए हैं, मेरे लिए, ताकि मैं सुखी बन सकूं, मैं सब चीजों का स्वामी, इन सब वस्तुओं का, सब व्यक्तियों का कर्तव्य है कि मुझे सुखी बनाए। तो नारद मुनि ने बोला कि जो देहात्म बुद्धि में जो व्यक्ति होते हैं, जो देहात्म बुद्धि में जीव है, वो इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते। फिर उन्होंने, नारद मुनि ने इस सिद्धांत की स्थापना की कि जीव ईश्वर नहीं है, जीव परम नियंता नहीं है, परम नियंता कृष्ण है, कृष्ण है परम अनंता, और इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहा, कि जीव ईश्वर जीव नियंता हो सकता है, अपने अपने घर के मालिक सभी हैं, है ना, अपने घर में सब अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन वो परम नियंता नहीं है, वो दूसरे के घर में कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते, लड़ाई हो जाएगी। आप किसी के घर के आगे अपनी कार या स्कूटर खड़ा कर दो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। आजकल कॉलोनीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, रोज झगड़े होते हैं इसी बात को लेकर के, हमारे घर के आगे आपने कूड़ा फेंक दिया या हमारे घर के आगे आपने गाड़ी खड़ी कर दी। अगर जीव परम नियंता ही होता तो ऐसे झगड़े कैसे होते, है ना, ऐसे झगड़े नहीं होते। सो उन्होंने बोला नारद मुनि ने कि जिस प्रकार जीव और उसके शरीर में भेद है, वैसा भेद कृष्ण में नहीं है, क्योंकि कृष्ण का शरीर और आत्मा एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। अगर कृष्ण सोचें, अगर कृष्ण सोचें कि मैं ये शरीर हूं, तो क्या वो देहातु बुद्धि होगी? वो तब भी देहातु बुद्धि नहीं है, क्योंकि कृष्ण है ही, कृष्ण में और उस शरीर में, उनके शरीर में कुछ भेद नहीं है। बलदेव विद्याभूषण इस बारे में बात करते हैं, भगवद गीता में चर्चा करते हैं, वहां पर वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं विशेष, वहां पर वो विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं देखो कृष्ण में और कृष्ण के शरीर में भेद नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम कृष्ण और कृष्ण का शरीर, हम ये दो बातें बोल रहे हैं। तो वो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि हम ये दो बातें सिर्फ एक सिद्धांत को समझाने के लिए बोल रहे हैं, वास्तव में कोई भेद नहीं है। अगर हम इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं करेंगे समझाने के लिए, तो फिर हम अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे। तो जब हम बोलते हैं कि कृष्ण का शरीर, तो कृष्ण का शरीर बोलने से कृष्ण और शरीर का भेद स्थापित नहीं होता, बल्कि ये इस बात को समझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनमें मैं और मेरा जैसी गलत धारणा नहीं होती, वो ये नहीं सोचते। और अगर कृष्ण में मान लिया कि उनमें मैं और मेरा की धारणा है भी, और क्या कृष्ण में धारणा नहीं है, मेरा प्रश्न है, कृष्ण में धारणा है ही? कृष्ण कह ही रहे हैं भगवद गीता में, हर चीज मुझसे ही प्रकट हो रही है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही हर चीज का भोगता हूं। कृष्ण इस बात को कह ही रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण ये सोचते हैं कि हर चीज मेरी है, तो वो धारणा भ्रांत नहीं होती, वो धारणा सही धारणा है, क्योंकि हर चीज कृष्ण से प्रकट है, इसलिए हर चीज के स्वामी कृष्ण है ही, स्वाभाविक रूप से कृष्ण सबके स्वामी है। इसलिए अगर कृष्ण ने यह सोच ही लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर पिता ये कह दे कि ये मेरा पुत्र है, तो क्या हम उसको फांसी में चढ़ा देंगे? क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे कि नहीं देखो कितने बड़े भ्रम में है ये बात है ही, ये बात सत्य है ही कि पुत्र जो है वो पिता की संपत्ति है, चाहे आज पुत्र ये बात न माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पुत्र का काम है पिता की सेवा करना, क्योंकि पिता के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर कृष्ण ये सोच भी लें कि सब कुछ मेरा है, तो भी इसमें कोई ना तो अतिशक्ति होगी और ना ही कोई भ्रांत धारणा ही मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे जो इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और जिसके लिए ये पूरा अध्याय ही बोला गया है कि कृष्ण ना तो किसी के मित्र हैं और ना ही किसी के शत्रु हैं। मतलब कृष्ण जो हैं वो पक्षपाती नहीं है। और वेदांत सूत्र में भी बोला गया है, वेदांत सूत्र में 2.1.34 इसमें बोला गया है, वैषम्य नैर घृण्य न सापेक्षत्वात्, कि जो भगवान है वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेते। परफेक्ट, भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। लेकिन तो हम भागवतम के उस श्लोक का क्या करें जिसमें यह कहा गया है इंद्रारी व्याकुलम लोके मृढ़यंती युगे युगे, कि जो इंद्र के शत्रु हैं जब वो इस संसार में बहुत ही उपद्रव करना शुरू कर देते हैं तो उनको मारने के लिए, उनका दमन करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इस बारे में इस श्लोक का हम क्या करें, इस श्लोक का क्या इलाज है? यहां पर विरोधाभास आ गया। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कृष्ण किसी का पक्ष नहीं लेते और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति की रक्षा के लिए दूसरे को मार देते हैं। तो इस विरोधाभास को हम कैसे समझें, इस विरोधाभास का, और एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए दूसरे को मारना तो बहुत बड़ी बात है। हम तो उससे भी पहले एक बात करना चाहते हैं कि आखिर कृष्ण किसी को मारते ही क्यों हैं? चाहे किसी की रक्षा के लिए मारे या वैसे ही मारे, कृष्ण मारते ही क्यों हैं? मारना तो बुरी बात है, अहिंसा परमो धर्म, मारना कोई अच्छी बात नहीं है। मारने की जरूरत ही क्या है, प्यार से समझा दो, क्यों मार रहे हैं हम किसी को? तो इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद कई उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद ने पहला उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि देखो, अगर एक जज है, न्यायाधीश है, अगर वो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जज उस व्यक्ति का दुश्मन है? जज उस व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, उस व्यक्ति के ऐसे कर्म थे, उसने ऐसा कार्य किया, ऐसा घृणित कार्य किया कि जिसके चलते जो जज है उसने उसको फांसी की सजा दे दी और वही जज किसी और व्यक्ति को कुछ कॉम्पनसेशन भी दे देगा। वो बोलेगा इस व्यक्ति का नुकसान हुआ, इसको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, है ना? तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो जज है ये उस व्यक्ति का मित्र है, देखो उसको उसने मुआवजा दे दिया। जिसका जैसा कर्म था उसके अनुसार उसको फल मिल गया। दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं बारिश का। वो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो पूरे पृथ्वी पर जगह जगह अलग अलग प्रकार की के पेड़ पौधे उग जाते हैं और कुछ वृक्षों के फल मीठे होते हैं और कुछ के कड़वे होते हैं। कुछ पौधों में सुंदर सुंदर फूल उगते हैं और कुछ पौधों में कांटे उगते हैं। कैक्टस है, कांटे ही है उसमें और कुछ है ही नहीं, कांटा ही है पूरा कैक्टस और कुछ है ही नहीं। तो क्या उसके लिए हम वर्षा को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? उसके लिए वर्षा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वर्षा तो समान रूप से बरस रही है। जो बीज पृथ्वी में पड़ा हुआ था उस बीज के अनुसार ही वैसा पौधा उग गया, उस बीज के अनुसार ही वैसा पौधा उग गया। तो इसके लिए वर्षा को आप ना तो वर्षा को श्रेय दे सकते हो, वर्षा की प्रशंसा कर सकते हो, और ना ही वर्षा को दोष दिया जा सकता है। वर्षा अपना काम कर रही है, उसका काम है बरसना। वो ये नहीं देखती कि मैं चट्टान पर बरस रही हूँ या समुद्र में बरस रही हूँ, वर्षा बरस रही है, लेकिन जैसा बीज पृथ्वी में पड़ा हुआ है उसी के अनुसार वैसा पौधा अंकुरित हो जाता है। ये बात अवश्य है कि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं हो सकती। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के बिना इस संसार की रचना नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह वर्षा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण को 84 लाख विभिन्न योनियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जिस प्रकार के संस्कार हैं किसी भी जीव में, उसके संस्कारों के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार की देह प्राप्त हो जाती है, अलग अलग प्रकार के की प्रवृत्तियां उसको प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। और कृष्ण कह भी रहे हैं कि देखो मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, उपदृष्टा अनुमंताचा, मैं देख रहा हूं और अनुमति दे रहा हूं, इच्छा आपकी है, मेरी इच्छा नहीं है। मैं उदासीनवत बिना किसी पक्षपात के मैं तो सिर्फ अनुमति दे रहा हूं और देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है और उसके अनुसार मैं उसको फल दे रहा हूं, उसके अनुसार उसको फल दे रहा हूं, इससे मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा करने के कारण किसी को राज्य देने के लिए और किसी को असुर योनि में डालने के लिए ना तो मेरी प्रशंसा की जानी चाहिए और ना ही मुझे दोष देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, मेरा क्या दोष है इसमें। कर्म आपका था, इच्छा आपकी थी, उसी के अनुसार आपको फल मिल गया। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद अग्नि का दे रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो अगर अग्नि में एक अबोध बालक हाथ डालेगा तो क्या उसका हाथ जलेगा या नहीं? हाथ जलेगा। अग्नि ये नहीं सोचेगी देखो अबोध बालक है, इसको क्या पता, है ना। अग्नि निरपेक्ष भाव से अपना काम करेगी। और इसके लिए अग्नि को क्या दोष दिया जा सकता है? अग्नि को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, अग्नि ने अपना काम किया। दोष बालक का है, उसने अपना हाथ अग्नि में क्यों डाला, अग्नि को कोई दोष नहीं दे सकता। तो जिस प्रकार हम अग्नि को दोष नहीं दे सकते, जिस प्रकार हम एक जज को दोष नहीं दे सकते, हम वर्षा को दोष नहीं दे सकते, उसी प्रकार भगवान पर दोषारोपण करना बिल्कुल निरर्थक है, गलत है, बेकार है। भगवान को कोई भी किसी भी परिस्थिति में दोष नहीं दे सकता। भगवान को जो दोष दे रहे हैं वो दोष केवल अज्ञान के कारण, देहात्म बुद्धि में होने के कारण भगवान को दोष दिया जा रहा है। चौथा उदाहरण कल्प वृक्ष का देखो कि कल्प वृक्ष के पास जाकर आप कुछ भी मांगेंगे, कल्प वृक्ष से आप कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगेंगे, कल्प वृक्ष आपको दे देगा। तो क्या उसमें कल्प वृक्ष का दोष है अगर आपने उससे कोई गलत चीज मांगी? कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं है, आपने जैसी इच्छा की कल्प वृक्ष ने आपको वैसा ही फल दे दिया। ये बात सारे जीवों पर लागू हो रही है, इंद्र से लेकर एक छोटे कीड़े तक, इंद्र गोपम नामक छोटे कीड़े तक सभी इसी नियम के अंदर बंधे हुए हैं। यस्तो इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति, कि इंद्र से लेकर इंद्र गोपम नामक कीड़े तक सभी जीव कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो फल भुगत रहे हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो हम कल्प वृक्ष की बात कर रहे थे कि कल्प वृक्ष के पास जाकर आप जो भी मांगो कल्प वृक्ष आपको देंगे। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण कल्प वृक्ष की तरह है, क्या कृष्ण कल्प वृक्ष की तरह है या नहीं? कृष्ण कल्प वृक्ष की तरह है? देखो अगर आंसर हाँ होता तो मैं प्रश्न नहीं पूछता था, क्योंकि फिर तो प्रश्न पूछने का मतलब कि अगर एक ही आंसर होगा तो नहीं। तो कृष्ण कल्प वृक्ष की तरह है या नहीं? अच्छा क्यों नहीं है? नहीं जरूरी नहीं है। आप कृष्ण से संपत्ति मांगो, कृष्ण दे देंगे और दे ही रहे हैं संपत्ति। जितने लोगों के पास ऐश्वर्य है, किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, वो उसके पास आए कहाँ से? वो कृष्ण ने ही दी, चाहे घुमा फिरा के दी। दी तो कृष्ण ने, और कृष्ण कह भी रहे हैं कि मैं ही दे रहा हूं। तो कृष्ण कल्प वृक्ष है। अच्छा क्यों नहीं है? हाँ माता जी आप कह रहे हो ना नहीं है, तो क्यों नहीं है? अभी तो हम भक्तों की बात नहीं कर रहे। वेरी नाइस। तो भगवान कल्प वृक्ष है भी और नहीं भी है। अगर हम बोले कि भगवान कल्प वृक्ष नहीं है, अरे ऐसा कैसे है? तो क्या कल्प वृक्ष में ऐसी शक्ति है जो भगवान में नहीं है, कि आपने कल्प वृक्ष जैसे तुच्छ जीव से कुछ मांग लिया और उसके पास वो शक्ति है देने की, लेकिन कृष्ण के पास नहीं? ऐसा नहीं है। कृष्ण कल्प वृक्ष है, लेकिन कृष्ण कल्प वृक्ष से बढ़कर है, क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति है। कृष्ण जहां पर सब कुछ देने की, कल्प वृक्ष की भांति सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, वहां पर वो ना देने की सामर्थ्य भी रखते हैं, है ना? कल्प वृक्ष के पास अगर आप गलती से पहुंच गए कभी और आपने कल्प वृक्ष से मांग लिया, तो कल्प वृक्ष बाध्य है आपको देने के लिए, लेकिन कृष्ण बाध्य नहीं है। कृष्ण पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा होगी दे देंगे, इच्छा होगी नहीं भी देंगे। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष को तो काट लोगे आप, चलो आया नहीं दिया काट दो उसको। कृष्ण का क्या बिगाड़ लोगे? कृष्ण का हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन ये बात तो है ही, और कृष्ण कह भी रहे हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजामि हम, कि जो जिस प्रकार मुझसे व्यवहार करता है मैं उससे उसी प्रकार व्यवहार करता हूं, है ना? तो यहाँ पर एक बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर स्थापित होता है कि पक्षपाती ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ही ना करो। मैं पक्षपाती नहीं हूँ, मैं नहीं बात करूँगा, मैं उससे हंस के बात नहीं करूँगा, उस पर गुस्सा नहीं कर रहा तो इससे हंस के भी बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पक्षपाती नहीं हूं। पक्षपाती नहीं होने की यह परिभाषा नहीं है। पक्षपाती नहीं होने की परिभाषा यह है कि जो आपसे जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहता है आप उससे वैसे व्यवहार करें, आप उससे वैसे व्यवहार करें, है ना? और एक सिद्धांत ये भी है कि जब तो भी ये विरोधाभास तो रहा ही कि कृष्ण जो है वो अपने एक भक्त के लिए उसके शत्रु को मार देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भक्त कहता है मत मारो मत मारो, कृष्ण कहता है इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं कभी भी, इसने ऐसा कर कैसे दिया, है ना? इसने मेरे भक्त के बारे में इसने कुछ उल्टा सीधा बोल कैसे दिया, इसको नहीं छोड़ूंगा। भक्त कहता है नहीं भगवान रहने दो, कृष्ण कहता है नहीं भैया ये बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी, छोड़ूंगा नहीं इसको, बोलते ही हैं भगवान नहीं। तो फिर ऐसा कहना कि कृष्ण पक्षपाती नहीं है, भगवान पक्षपाती नहीं है, ये कैसे, इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? तो इसको समझने के लिए हमें भगवान के दो रूपों को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक परमात्मा रूप में और दूसरा भगवान के रूप में। परमात्मा के रूप में भगवान पक्षपाती नहीं है, परमात्मा के रूप में वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कहते। लेकिन भगवान के रूप में भगवान पक्षपाती हैं, भगवान के रूप में भगवान बहुत ही बड़े पक्षपाती हैं। अगर उनके भक्त किसी ने टेढ़ी आंख से भी देख लिया उसको भगवान नहीं छोड़ते। तो जब ये कहा जाता है कि भगवान पक्षपाती नहीं है तो उनके परमात्मा रूप का की बात की जाती है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि भगवान पक्षपाती हैं तो भगवान पक्षपाती हैं, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, अपने पुत्र को बचाने के लिए व्यक्ति किसी से भी झगड़ लेगा, अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा, और भगवान भी ऐसा करने में पूरे सक्षम भी हैं और करते ही हैं। और भगवान ने अर्जुन को बोला ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना वचन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। तो भगवान पक्षपाती हैं लेकिन परमात्मा के रूप में वही भगवान पक्षपाती नहीं है, निरपेक्ष है। तो ये विरोधाभास का यहाँ पर समन्वय हो जाता है, इस विरोधाभास का। अभी 9 बज गए हैं, अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं कि एक बात तो चलो हम कर पाए कि भगवान पक्षपाती हैं भी और नहीं भी, और भगवान में विरोधाभास होते हुए भी हर चीज़ का समन्वय हो जाता है, भगवान में शक्ति है कि हर चीज़ का समन्वय कर लेते हैं सारे विरोधाभासों का, वो इसलिए है कि वो किस कारण से है, तो भगवान अपनी अचिंत्य योग शक्ति से ऐसा संभव बना देते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर। और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि कितना अद्भुत है, कितनी अद्भुत बात है कि कृष्ण निरपेक्ष होते हुए भी पक्षपाती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो पक्षपाती हैं भगवान के रूप में, वो पक्षपाती हैं और हमेशा पक्षपाती रहेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे विराम देते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न या कुछ टिप्पणी है तो कह सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, पक्षपात और जो पक्षपाती नहीं है। आपने एक बात बताई थी कि भगवान कृष्ण और कृष्ण का शरीर ये अलग है नहीं, बट लेकिन हम लोग ये जस्ट समझाने के लिए बोलते हैं भगवान कृष्ण का और कृष्ण का शरीर अलग है। तो मेरी ये जो एक जिज्ञासा थी कि अगर भगवान कि जो हर एक इंद्रिय से भगवान हर कार्य कर सकते हैं, तो जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर इंद्रिय के बारे में अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल भगवान का जो कहा गया कि भगवान की जो स्माइल होती है उससे आपका अहंकार का दमन हो जाता है, तो ये वाई पर्टिकुलरली भगवान कंप्लीटली पूर्ण है, मतलब हर हर इंद्रिय समान, मतलब इक्वली पावरफुल,
तो आपका प्रश्न क्या है?
ये ऐसे इसे कैसे समझे, इसे कैसे समझे?
कि भगवान की हर इंद्रिय समान है।
बट वाई ये जो भक्त हैं एक इंद्रिय के प्रति पर्टिकुलरली क्यों बोलते हैं ऐसा, या भगवान की इंद्रिया तो समान, या फिर पर्टिकुलर इंद्रिय में कुछ ऐसे स्पेशल पोटेंसी होगा?
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो भक्त हैं वो भक्त भगवान के अलग अलग गुणों से आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान के होठों से आसक्त हैं, बाकी कृष्ण को हम नहीं देखते। भगवान हम होठों से आसक्त इसलिए हैं क्योंकि वो कृष्ण के होठ हैं, है ना? अगर वो अमिताभ बच्चन के होठ होंगे तो हम थूकते हैं उस पर, है ना? लेकिन जो भक्त हैं वो अपने भावों के अनुसार अलग अलग भगवान के लक्षणों से आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं और उसका गुणगान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और ये ठीक भी है अगर हम ये बात बोलें कि भगवान के मतलब कान और भगवान के होठों में फ़र्क नहीं है, तो फर्क है भी और नहीं भी है, है ना? उसका रूप अलग है और होठों का रूप और उससे आसक्ति अलग है, लेकिन क्या वो अलग हैं? वो अलग नहीं भी हैं, क्योंकि भगवान अपनी हरेक इंद्रिय से हरेक इंद्रिय का काम कर सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से भोग लगा लेते हैं और भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए मैथुन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपनी आंखों से ही भगवान सृष्टि की रचना कर देते हैं, है ना? लेकिन जो भक्त हैं, भक्त भक्त भगवान के चरणों से भी आसक्त हो सकते हैं, तो भगवान के चरणों से ऊपर जाएंगे नहीं, चरणों में अटक जाएंगे, भगवान के चरणों के बारे में ही, भगवान के चरणों पर ही ध्यान लगाते रहेंगे, है ना? और कितने ही भक्त हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि हे भगवान हमें आप अपने चरणों की रज बना लेंगे। अब जो रज है, भगवान की जो चरण रज है, एक कण जो है रज का, क्या वो भगवान के मुख का दर्शन कर पाएगा कभी? वो कभी दर्शन शायद ना कर पाए, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा वहां पर रहकर, उसकी आसक्ति है वहां पर, वो भगवान के चरणों से आसक्त हो गया वो, है ना? ये हर एक भक्त का अलग अलग भाव है और भक्तों ने विभिन्न भक्तों ने अलग अलग भावों के अनुसार भगवान के विभिन्न अंगों की स्तुति की है। कईयों ने भगवान के केशों की स्तुति की है, सिर्फ भगवान के केश के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो, है ना? तो भक्तों का भाव है।
थैंक यू।
और किसी का प्रश्न? चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की 5 मिनट लेट हो गए हम लोग, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं लेट होने के लिए।